योएल अध्याय दो। उसने इन उपमाओं को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया और भविष्य के दिन के विनाश के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, जो उन सेनाओं के द्वारा जो इस धरती पर आक्रमण करेंगी आ रहा है। दूसरे अध्याय में इस आक्रमणकारी सेना का वर्णन या चित्रण उसने दिया है। उस पर ध्यान देना रुचिपूर्ण है, क्योंकि हमें ये देखने के लिए अपनी कल्पनाओं को ज्यादा फैलाना, आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा कि वो आधुनिक युग का वर्णन कर रहा है। जिन बातों का उसने वर्णन किया है, वे बातें उसके दिनों में बिल्कुल अनजान और अनसुनी थी, लेकिन अब वही बातें उस आधुनिक युद्ध में सामान्य है। अब अगर आप योएल भविष्यद्वक्ता हो और परमेश्वर आपको एक लड़ाई का दर्शन दे जो आधुनिक युद्ध के साथ लड़ी जा रही हो, लेकिन आप केवल भाले और तलवारों के साथ सेनाओं का लड़ना जानते हो, आप कैसे सोचेंगे कि आप एक आधुनिक लड़ाई का वर्णन कर सकते हैं? हेलीकॉप्टर, गनशिप और जहाज के द्वारा फौज को ले जाना, पैराट्रूपर के साथ इत्यादि। अगर आपको इस तरह की लड़ाई के मैदान, टैंक और तोप और आग इत्यादि का दर्शन मिले, आप कैसे इसका वर्णन करेंगे? योएल की तरह जो उसने यहां अध्याय में किया है, मैं सोचता हूं कि उसने ऐसी बात का वर्णन करके जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा, एक आश्चर्यजनक, एक सराहनीय काम किया है। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसे भविष्य की लड़ाई के दिन का पूर्ण ज्ञान दिया। अब इसराइल राष्ट्र को एक तरीके से स्थापित होने की जरूरत है, ताकि अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां पूरी हो सके, क्योंकि अंत के दिनों की भविष्यवाणियों में एक मान्यता है कि इसराइल फिर से एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आएगा। असल में वो केवल एक राष्ट्र के रूप में ही नहीं उभरेगा, बल्कि उनकी आराधना भी फिर से स्थापित होगी। अब राष्ट्र के रूप में इसराइल को दोबारा पैदा होना है। भविष्यवाणी के अनुसार सबसे पहली बाधा जिसका उन्हें सामना करना होगा वो है उनके चारों ओर के राज्य। जकरिया की भविष्यवाणी के अनुसार इसराइल का एक बार फिर राज्य बनने पर उन्हें अपने चारों ओर के पड़ोसियों के विरोध का सामना होगा। लेकिन तब एक और बड़ी परीक्षा आने जा रही है। ये तब होगी जब रूस मध्य पूर्व पर आक्रमण करेगा और परमेश्वर अपने मजबूत हाथों को उन लोगों की ओर से दिखाएगा। तब उनकी आंखें परमेश्वर के लिए ऐसी खुलेंगी जैसे पहले कभी नहीं खुली थी। तब एक अंतिम युग होगा जब मसीह का विरोधी अपनी पश्चिमी यूरोप के संगठित राज्यों की सेनाओं के साथ देश में आएगा और यहूदी एक बार फिर देश से भगाए जाएंगे और वे जंगल में पत्थरों के शहर पेत्रा में 3.5 साल के लिए चले जाएंगे, जब तक परमेश्वर का कोप जो वो बरसाने जा रहा है पूरा न हो जाए, शरण पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि योएल अध्याय दो रूस के आक्रमण का विवरण है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा उत्तरी सेना को बहुत दूर हटाने का जिक्र है और एहेस्केल अध्याय 38 में ये निर्देश दिया गया है कि ये सेना उत्तर से आएगी। एहेस्केल का चित्रण रोचक है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, और योएल ने भी बादलों का चित्र को और अंधकार को जो उस आक्रमणकारी सेना के द्वारा बनेगा प्रयोग किया है। योएल अध्याय 2:1। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। अब परमेश्वर का दिन उस नियत काल के समय को करीब ला रहा है। वो बड़ा न्याय जिसे परमेश्वर इस धरती पर लाने वाला है, परमेश्वर के दिन के नाम से जाना जाता है, उसके भयंकर क्रोध का दिन। उस दिन को भी परमेश्वर के दिन के नाम से जाना जाता है जब परमेश्वर यीशु मसीह अधिकार के द्वारा धार्मिकता के नए राज्य की स्थापना करेगा। वो दिन जब परमेश्वर सारी जातियों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा, परमेश्वर के दिन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये अंतिम दिनों के नियत काल को कम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का दिन निकट है। योएल अध्याय 2:2, वो अंधकार और तिमिर का दिन है। अतः ये दिन मसीह के विजयी शासन का दिन नहीं है, वो तो अंधकार और उदासीनता का दिन है। योएल अध्याय 2:2 में आगे लिखा है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है, जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। एक बड़ी सेना जैसी इंसानी इतिहास में पहले कभी एकत्रित नहीं हुई। आज रूस के पास लड़ाई के लिए 80,000 टैंक तैयार है। इंसानी इतिहास में इतनी युद्ध सामग्री कभी तैयार नहीं की गई, 80,000 टैंक। जब वो इस आक्रमण का वर्णन करेगा, टैंक का जिक्र भी आएगा। योएल अध्याय 2:3, उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उसे कुछ ना बचेगा। जब यहूदी इस धरती पर आए थे तो सबसे बढ़िया काम जो उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने इस बंजर और जंगली भूमि को लेकर खेती या कृषि के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार इसराइल की इस भूमि को विकसित करना शुरू किया था। सुंदर कृषि भूमि, सुंदर फलों का भाग, सुंदर शीतल कुंज, मीलों मील फैली हुई सुंदर भूमि आदन की वाटिका के समान, पहाड़ों की तरफ की भूमि जो खेती के लिए बहुत पथरीली थी, उस भूमि पर हजारों लाखों पेड़ लगा दिए गए। इसलिए बंजर पहाड़ी का हिस्सा अब सुंदर जंगल बन गए। इतने सारे पेड़ लगाने से वे मौसम के मिजाज में भी परिवर्तन लाने के लायक हो गए और बरसात को बढ़ाने के काबिल हो सके। भूमि में वर्षा की दर भी सालाना स्तर पर नाटकीय रूप से बढ़ गई, क्योंकि जो पेड़ और जंगल उन्होंने लगाए थे उनसे निकलने वाली अतिरिक्त नमी हवा में मिल गई और उनकी सारी योजना इस बंजर और जंगली भूमि को लेना, पेड़ पौधे लगाना और विकसित करना, वो सच में सबको आश्चर्यचकित करती है। उन्होंने खेती में आश्चर्यजनक नए बदलाव विकसित किए हैं। सिंचाई की फोहारा पद्धति और छिड़कने वाली पद्धति, उन्होंने सच में ये साबित कर दिया था कि वे प्रगतिशीली किसान हैं। उन्होंने भूमि को बदल दिया और आप ये उक्ति सुनते होंगे, उन्होंने भूमि को आदन की वाटिका की तरह बना दिया। ये सत्य है। यहां भविष्यद्वक्ता कहता है, उसके आगे की भूमि तो आदन की वाटिका के समान है। आप 50 साल पहले ये नहीं कह सकते थे, क्योंकि 50 साल पहले मिगिदोन की तराई एक शांत दलदल थी, हुली घाटी सारी दलदल थी, बेरशेबा सारी बंजर, सूखी और जंगली थी। असल में ये नए युग की शुरुआत थी जब उन्होंने शारोन के समतल में विकास शुरू किया। उन्होंने दलदल वाली भूमि खरीदी और नालियां बनाकर दलदल का पानी बहाना शुरू कर दिया। फिर सफेदे के पेड़ लगाए क्योंकि वे जमीन से बहुत पानी पीते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने संतरे का भाग लगाना शुरू किया और आज सच में उनके सावधानी पूर्ण उपाय और विवेकपूर्ण विकास की योजना के द्वारा ये भूमि आदन का बगीचा बन गई है। वो जिस भूमि का जिक्र कर रहा है उनके सामने आदन के बगीचे की तरह है। वो वर्तमान दिन को लेता है। ये तब तक नहीं होता जब तक इसराइल एक राष्ट्र नहीं बन जाता और यर्दन का पानी नीचे अपने जंगल के इलाकों में सिंचाई के लिए नहीं जाता और उस भूमि को आदन की वाटिका में नहीं बदलता। लेकिन इस आक्रमणकारी सेना के पीछे निर्जन और उजाड़ है। युद्ध एक बहुत भयानक बात है जो बर्बादी लाता है। यहूदियों ने एक निर्जन उजाड़ भूमि लेकर उसे आदन की वाटिका बना दिया, लेकिन ये आक्रमणकारी आदन की वाटिका को लेने और उसे फिर से निर्जन और उजाड़ बनाने आ रहे हैं। योएल अध्याय 2:3 के अंत में लिखा है, और उससे कुछ ना बचेगा। अब वो इस आक्रमणकारी सेना के रूप का वर्णन कर रहा है और सुनिए, ये मेरे लिए बहुत रोचक है। योएल अध्याय 2:4 से लेकर 10 तक। उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करते हुए लौ का, या जैसे पंक्ति बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। वे शूर वीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी अपनी पंक्ति से अलग ना चलेगा। वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पंक्ति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। अतः वो भयानक आक्रमणकारी सेना का वर्णन करता है जो भूमि को बर्बाद करने आ रही है। लेकिन 11वें वचन में एक दूसरी सेना है। योएल अध्याय 2:11। यहोवा अपने दल के आगे अपना शब्द सुनाता है क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वो सामर्थी है क्योंकि प्रभु का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। अतः विरोध में वो परमेश्वर की सेना की बातें करता है। अब परमेश्वर रूस वासियों को रोकने जा रहा है। एहेस्केल के 38वें अध्याय में प्रभु की ये वाणी है कि जब रूस और उसके सहयोगी राष्ट्र इसराइल पर धावा बोलेंगे तब परमेश्वर का कोप उसके चेहरे पर दिखेगा और वो उन्हें वापस लौटा देगा। जब रूस मध्य पूर्व पर आक्रमण करेगा तब लोग रूस की लड़ाई से ज्यादा हर मिगदोन की लड़ाई से परिचित होंगे। पश्चिम संसार की ताकतों को पूर्वी संसार की ताकतों के विरुद्ध हर्मगिदोन का युद्ध कब्रिस्तान होगा। सर्वप्रथम हर्मगिदोन के युद्ध में चीन, रूस पश्चिमी संसार की ताकतों के विरुद्ध कब्र में जाएंगे। लेकिन यहां ये आक्रमणकारी सेना जो आएगी, परमेश्वर उसे अपनी सामर्थ्य सेना के द्वारा वापस भगाने की बात कर रहा है। रूस की सेना के विनाश का वर्णन परमेश्वर के दूत के द्वारा एहेस्केल अध्याय 38 और 39 में दिया है। ये भीषण लड़ाई लोग देखेंगे क्योंकि उससे महाविनाश होगा। योएल अध्याय 2:12। तो भी इस कारण यहोवा की ये वाणी है, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अब एक बड़ी दुख भरी बात जो इसराइल के आधुनिक राष्ट्र के विरुद्ध कहनी चाहिए वो ये है कि लोग सच में अपने पूरे हृदय के साथ फिरकर परमेश्वर के पास नहीं आए। लोग सच में धर्मी नहीं है। एक अनुमान के अनुसार उस भूमि पर रहने वाले यहूदियों में से 10% से भी कम यहूदी विश्वासी या धर्मी है, और ये हमने खुद देखा जब हम वहां थे। वे भी धार्मिक रीति रिवाजों और सबत का दिन को मनाते हैं। बहुत सारे यहूदी जिनसे हमने बातचीत की वे अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन वे सबत रखते हैं, कोशर रखते हैं। जहां तक हो सके वे डेयरी उत्पादन, मांस के उत्पादन के साथ नहीं खाएंगे, और जब लोग ऐसा करते हैं तो वे उनका अपमान करते हैं। जब हम वहां पर थे तब हमने देखा कि मांसाहारी खाने के बाद रात में लोग अनजाने में दूध का ग्लास मांग लेते थे। वे बहुत शांत होते थे, लेकिन वे आपको बता देते थे कि आपको मांसाहारी भोजन के बाद दूध नहीं मिल सकता, और वे ये कोशर की तरह के नियम को मानते हैं, जबकि वे सच में नहीं जानते कि क्यों। बहुत लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, हमने कहा सुअर का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, आपको पता है सुअर का सैंडविच क्यों नहीं खाना चाहिए या पनीर नहीं खाना चाहिए। इसलिए वे उनकी तरह है जिनके बारे में नियम में बताया गया है कि उनमें अच्छाइयां तो है, परंतु फिर भी वे परमेश्वर की सामर्थ को अस्वीकार करते हैं। वे अपने जीवन में परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बुला रहा है और कह रहा है कि अपने संपूर्ण हृदय से उसके पास आओ, अपने संपूर्ण हृदय के साथ। लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है कि वे आधे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि इसराइल में सत्य है। लोग परमेश्वर की तरफ आधे हृदय से आते हैं। योएल अध्याय 2:12। अब भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ये परमेश्वर के सामने एक सच्ची निराशा की बात है। ये दुख की बात है कि हम कई बार परमेश्वर को निराश करते हैं। ये मेरे जीवन में बहुत कम बार हुआ है जब मैं परमेश्वर के सामने निराश हुआ हूं, लेकिन मैं गवाही दूंगा कि जब जब मैं परमेश्वर के सामने निराश हुआ तब तब परमेश्वर मुझे बहुत नाटकीय रूप में मिला। मेरी माता मेरे जीवन में समस्त अच्छाइयों का मूल थी। मैं उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। अपने अंतिम दिनों में रोग शैया पर वो बहुत कष्ट उठा रही थी। एक दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो उनकी दशा को देखकर मैं परमेश्वर के सामने पूर्ण रूपेण हताश हो गया। तो मैं वही उनके बिस्तर के पास पैर की तरफ अपने घुटने पर बैठ गया और परमेश्वर के आगे पुकार उठा, और प्रभु मुझे बड़े नाटकीय रूप में मिला। प्रभु आया और मेरे पास खड़े होकर मुझसे मेरे बारे में और मेरी माता के बारे में बातें करने लगा। उसी वक्त उसने मेरी माता पर अपना हाथ रखा और उन्हें छुआ। ये एक अद्भुत अनुभव था जो मुझे उस निराशा के बीच मिला। हमारी सबसे छोटी बेटी हमारे जीवन के लिए एक आनंद और आशीष का कारण थी। मैं नहीं जानता यदि आपके परिवार के बारे में कि कई साल बाद एक और विशेष सदस्य आए तो आपको कैसा लगेगा? आप बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं, आप उसका अधिक आनंद उठाने में सामर्थ है, आप व्यग्र या उत्तेजित नहीं है, और वो आपके लिए एक रोशनी और एक चमक बन जाती है। वो हमारे लिए थी ऐसी एक सुंदर छोटी बच्ची, बहुत चंचल जीवन से भरी हुई। मैं उसको पूरी रात अपनी बाहों में लिए हुए था, उसका बदन भुखार से तप रहा था। वो बहुत बीमार थी, बहुत उदास, मेरे हृदय बहुत निराश था। मैं परमेश्वर के आगे अपने पूरे हृदय से रो पड़ा। उसका बदन एंटने लगा था। मैंने सोचा अंत आ गया, लेकिन मैंने कहा, परमेश्वर, आप जानते हैं ये छोटी बच्ची हमारे जीवन का आनंद है, ये हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु अगर आप इसे चाहते हैं और इसको ले जाना आपका उद्देश्य है तो परमेश्वर हम इसे आपको देते हैं, इसका जीवन आपका है। वो एंटन में चली गई थी। मैंने सोचा ठीक है, ये बात है। हमने डॉक्टर को फोन किया, उसको लपेटकर हम डॉक्टर के पास भागे, परंतु रास्ते में ही परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे वो एकदम ठीक थी, वो फिर से चंचल और खुश मिजाज हो गई। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, इसको तो कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, क्या इसे टेटेनस लगा है? उसने उसे एक टेटेनस की सुई लगाई। उसने कहा, आप जानते हैं आपको थोड़े समय बाद फिर लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये वो निराशा थी परमेश्वर को पाने की, और जब भी मैंने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से ढूंढा है मैं कभी नहीं चूका, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि मैं निराश हूं। परमेश्वर ने कहा, योवेल अध्याय 2:13, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर। हमने कई बार वचन में पढ़ा है कि जब परेशानियां आई और लोगों ने ये दिखाने के लिए अपने कपड़े फाड़े कि वे कितने परेशान हैं या कितनी गहरी भावनाओं ने उन्हें छुआ है। कपड़े फाड़ना अपनी गहरी भावनाओं को प्रकट करने का बाहरी तरीका है। बाहरी दिखावे की तरह लोग उन्हें गाली देने लगते हैं। आप बाहरी दिखावे में जा तो सकते हैं, लेकिन उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकते। ये एक तरह का पाखंड बन जाता है जहां ये दिखाता है कि मैं इस कठिनाई से गुजर रहा हूं, लेकिन ये केवल दिखावा है, केवल एक तमाशा। फिर ये हर रोज की बात बन जाती है, ओ आज रात आप मेरे साथ नहीं जा सकते। ये सच में आपके उस गहरे शोक को नहीं दिखाता जिसके दिखाने के लिए आपने ये हरकत की। इसलिए परमेश्वर कहता है, देखो मैं तुम्हारे हृदय को फटा हुआ देखना चाहता हूं, तुम्हारे कपड़ों को नहीं, मैं तुम्हारे हृदय को परमेश्वर के सामने चितड़ा देखना चाहता हूं। अपने हृदय को टुकड़े टुकड़े करो, अपने हृदय को चितड़े करो, अपने वस्त्रों को नहीं। परमेश्वर कोई ढोंग नहीं चाहता जब आप उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण हृदय के साथ उसके पास आए। वो आपके साथ खेल नहीं खेलना चाहता। वो चाहता है कि आप ईमानदार और निष्कपट बने। वो आपके हृदय के टुकड़े करना चाहता है, आपके वस्त्र के नहीं। योएल अध्याय 2:13 में आगे लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। परमेश्वर की ओर फिरने की दूसरी बुलाहट, और जब हर जगह निराशा हो तभी परमेश्वर की ओर फिरने का समय है। परमेश्वर की ओर फिरने के लिए हर समय अच्छा समय है, लेकिन विशेषकर निराशाजनक स्थिति में। योएल अध्याय 2:13 में आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है, इसी कारण उसकी तरफ हम फिरते हैं ताकि हम उसका अनुग्रह प्राप्त कर सके, उसकी दयालुता प्राप्त कर सके। योएल अध्याय 2:13 में आगे लिखा है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणा निदान है, और परमेश्वर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दंड का प्रयोग करना पसंद नहीं करता। योएल अध्याय 2:13 के अंत में लिखा है, और दुख देकर पछताने हारा है। ये वो न्याय है जो आपको जगाने के लिए, आपको लौटा लाने के लिए, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। परमेश्वर कठिन रास्तों का प्रयोग पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करता है कि वो आपको अपना जीवन नाश करने नहीं देना चाहता, इसलिए वो इनका प्रयोग करता है। अतः जब आप जिद्दी अपने बर्बादी के रास्ते पर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर बहुत कठिन परिस्थितियों का प्रयोग आपको रोकने के लिए और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है, जैसे कि आपके किसी बहुत प्यारे या निकट वाले की मृत्यु या बीमारी। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को इन बातों का प्रयोग पसंद नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि कई बार हम आत्मिक जागरूकता में इतने धीमे होते हैं कि परमेश्वर को इन कठोर उपायों का प्रयोग करना पड़ता है, जब तक कि हम समझते नहीं। उसको पछतावा होता है, क्योंकि वो इस तरह के उपायों का प्रयोग एकदम पसंद नहीं करता। परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि कौन जानता है कि परमेश्वर आपकी सहायता करने और आपको आशीषित करने के लिए क्या करेगा। कौन जानता है परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए क्या आशीष और योजना है। सच में मैंने सपने में भी उन आशीष भरी योजनाओं के बारे में नहीं सोचा था जो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए बनाई थी। मेरा मन धन्यवाद से भरा है कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। आज क्या ही सुंदर आशीषें मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। मेरे सारे सपनों को ज्यादा कौन जानता है। परमेश्वर के दिमाग में आपके लिए क्या है। जैसे ड्वाइट मूडी ने अपने इस वक्तव्य के द्वारा चुनौती दी थी, संसार को अभी देखना बाकी है, परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा जो अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को देता है क्या करेगा। कौन जानता है कि परमेश्वर आपके जीवन में और जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है। आप कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे। अपने संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि कौन जानता है कि परमेश्वर के दिमाग में आपके लिए क्या आशीषें हैं। योएल अध्याय 2:15 से लेकर 17 तक। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम दराई ना होने दे, ना अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा। इसलिए उनमें राष्ट्रीय जागृति लाने का समय आ गया था। परमेश्वर के सामने लोगों को इकट्ठा करो, और ये दिन इसराइल पर आएगा जब वे शत्रु का भय खाएंगे। वे परमेश्वर को पुकारने के लिए विवश होंगे। जी हां, परमेश्वर ने याजकों को बुलाया है कि वे आंगन में और वेदी के बीच प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को इस शत्रु की तबाही और बर्बादी से बचा ले। परिणाम के रूप में योएल अध्याय 2 पद 18 से लेकर 20 तक, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाक मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामदराई ना होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। 1973 में हम इसराइल में थे। उस समय यौम किपुर का युद्ध समाप्त ही हुआ था। उस समय हम ये नहीं जानते थे कि इसमें रूस कितनी गहराई तक जुड़ा है। 1973 में लगभग ऐसा ही हुआ। मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए रूस को अपनी सेना का सहारा लेना पड़ा। वो शांति शांति कहता था, परंतु उनका असली मकसद इसराइल पर हमला करना था। 1973 में वे इसकी योजना बना रहे थे जब राष्ट्रपति निक्सन ने संसारिक स्तर पर हमारी सारी हथियार बंद सेनाओं को सतर्क कर दिया और रूस वापस चला गया। वहां इसराइल में मैंने स्वयं को ऐसा सुरक्षित महसूस किया जैसे एक बच्चा स्वयं को पालने में महसूस करता है, क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर खुद इस देश की रक्षा करेगा। मैं संयुक्त राज्य के बारे में नहीं जानता था। आप जो घर में हैं उनके लिए मैं एक तरह का दुख महसूस करता हूं। हो सकता है कि इस दिशा में कुछ भटकते हुए आणविक हथियार भेज दे, लेकिन जब रूस हमला करेगा तब परमेश्वर इस देश के लोगों को बचाने आएगा। लोग कहेंगे, ओह, क्या तुम इस सारी हलचल या खलबली के साथ वहां जाने से नहीं डरते? मैं यहां सड़क पर चलने से ज्यादा वहां सुरक्षित महसूस करता हूं। परमेश्वर की निगाह उस धरती पर है, उसकी देखभाल परमेश्वर करेगा। योएल अध्याय 2 पद 21 से लेकर 23 तक, हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। सबसे रोचक बात जो इसराइल में हुई वो है अगली और पिछली वर्षा की वापसी। वहां पहली वर्षा की शुरुआत अक्टूबर के अंत या नवंबर में होती थी और अब वहां अच्छी भारी वर्षा शुरुआत में होने लगी और इस कारण धरती भरपूरी से पैदावार दे रही है। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो अगली और पिछली वर्षा को फिर से लौटा देगा, ऐसी चीज से जो भूमि के पास करीब 2000 वर्ष से नहीं थी लेकिन अब फिर से हर साल है। मुझे बताए कि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है? मुझे बताए, क्या परमेश्वर नहीं जानता वो क्या कर रहा है? इसराइल राष्ट्र इसका सबूत है, सबूत जो किसी को कभी भी चाहिए। योएल अध्याय 2 पद 24 और 25, तब कलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज आरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्राकृतिक विपदा जो परमेश्वर त्याग के कारण उन पर आई थी, उसके बाद परमेश्वर द्वारा फिर से समृद्धि प्रदान करने की प्रतिज्ञा है। आप जानते हैं यही भविष्यद्वक्ता कह रहा था। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। ये बहुत दुख की बात है जो हम अपने जीवनों के साथ करते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे दुख भरी बात जो इस दुनिया में है वो है अपने प्रभाव का दुरुपयोग। मैं जवान लोगों को जबरदस्त या आश्चर्यजनक शक्तिशाली या सामर्थी देखता हूं, अच्छा दिमाग, अच्छी व्यक्तित्व गुणों से भरपूर, और मैं उनको अपना जीवन बर्बाद करते हुए देखता हूं, बेवकूफियों करते हुए, ऐसे काम करते हुए जिनका दुष्परिणाम सालों भुगतना पड़ता है। ये आज भी हमारी त्रासदी है, व्यर्थ की बातों में जीवन गंवाना। आज जब हम चर्च से घर आते हैं, हम अपने घर की खिड़की से स्कूल के मैदान में जो हमारे पीछे है देखते हैं। हमने 10-11 साल के लड़कों को अपनी साइकिलों के पास खड़े देखा। उन्होंने माचिस जलाई ही थी कि उनकी नजर मेरी पत्नी पर पड़ी और वे मुंह छिपाने लगे। मेरी पत्नी कहने लगी, ये छोटे बच्चे मैरिजुआना स्मैक पीने की तैयारी कर रहे। और थोड़ी देर में वही पुरानी बदबू खिड़की से अंदर आई, इसलिए मैं नीचे गया और बच्चों से कहा, हे, यहां रहने में कोई बड़ाई नहीं है। मैंने इन छोटे बच्चों को देखा और सोचा, ओह, कितनी दुख की बात है ये त्रासदी। रविवार की दोपहर या छोटे छोटे बच्चे कुछ अच्छा करने का विचार नहीं करते सिवाय इसके कि किसी नशे के अड्डे पर जाए, नशा करे। जीवन की कैसी बर्बादी है। मैंने बहुत लोगों को मैरिजुआना पीने के प्रतिफल में बदले हुए व्यक्तित्व और क्षमता की कमी में देखा है। जरा सोचिए कि कितनी कम उम्र में उन्होंने ये शुरू कर दिया जो उनके सारे भविष्य की क्षमता को समाप्त कर देगा। मुझे मत बताइए, इससे आदत नहीं पड़ती। वे कहते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं जो इसे छोड़ नहीं सके। मुझे ये मत कहिए, इससे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता। वे कहते हैं, मैं बहुत सारे परिवर्तित व्यक्तित्व से मिला हूं। मैंने उन व्यक्तित्व का अध्ययन किया है जिनको ये पता भी नहीं कि उनका व्यक्तित्व बदल चुका है, लेकिन कोई भी उन्हें दूर से देखकर बता सकता है। परंतु वे अभी भी सोचते हैं कि वे ठीक है। वे अभी सोचते हैं वे सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक परिवर्तित व्यक्तित्व है। कोई भी दूर से देख सकता है। और मैं सोचता हूं, शक्ति की बर्बादी और बर्बाद जीवन, ये कितना दुखदायी है। लेकिन ये महान गौरवशाली बाइबल जो हमारे पास है, परमेश्वर उस व्यक्ति को उसके सारे बर्बाद साल लौटा रहे हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह। आज मैं ऐसे बहुत जवान आदमियों को देखता हूं जो आज सेवकाई में है, जिनका जीवन कभी आशा रहित विनाश की स्थिति में था। मैं सैन डिगो शहर में माइक मैकिंटोश के बारे में सोचता हूं। जब माइक पहली बार आया था तो वो बहुत दुखी था। ये जीवन की निराशा का एक उदाहरण था। उसके सामने भविष्य नहीं था। उसने जीवन में उत्थान की आशा छोड़ दी थी। उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई। वह उसको बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पत्नी को लौटाया। मैं सोचता हूं आज उसके पास 5 बच्चे हैं और परमेश्वर ने उसकी स्थिर बुद्धि को लौटाया। परमेश्वर ने माइक को एक अद्भुत तरीके से बचाया और अब वो पादरी का कार्य कर रहा है। वो ऊंचे दर के प्रचारकों के समूह के साथ सारे संसार को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है कि परमेश्वर उसके जैसे लोगों को अद्भुत ढंग से पुनर्स्थापित करता है जो अपनी बेवकूफियों से अपने आप को बर्बाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उन सालों को लौटा दूंगा जो नष्ट हो गए हैं। इसमें परमेश्वर का अनुग्रह है। योएल अध्याय 2:26-27, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूं। अब परमेश्वर हमें एहेस्केल के 38वें अध्याय में बताता है कि जब वो रूस की आक्रमणकारी सेना को नष्ट करेंगे, तब उसका नाम इस पृथ्वी के सारे राष्ट्रों के सामने पवित्र होगा और वे जानेंगे कि वही परमेश्वर है जो अपने लोग इसराइल के लिए लड़ेगा। योएल अध्याय 2:27-32 तक, और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद अंतिम दिनों में मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। अब योएल की ये भविष्यवाणी असल में अंतिम दिनों से संबंधित है। ये प्रायः गलत ही समझी जाती है, क्योंकि पत्रस के साथ पेंतिकोस के दिन वहां मौजूद कलीसिया पर आत्मा उंडेला गया। उसके साथ वहां आग के खंभों का चिन्ह था, अन्य भाषाएं बोलना और बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द। वहां जो लोग एकत्रित थे वे ये सुनकर और देखकर कि ये लोग तो हमारी बोली में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वे बहुत आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए और उन्होंने सवाल पूछा, इसका क्या मतलब है? उन्होंने जो वहां खड़े थे मजाक करके कहा, इनको कहीं से नई मदिरा मिल गई है और ये असल में नशे में है। इसलिए पत्रस खड़ा हुआ और वहां इकट्ठे लोगों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी तरफ ध्यान दो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो सवेरे के सिर्फ 9 ही बजे हैं। ये पीने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन आपको उनका सवाल याद है, इसका क्या मतलब है? पत्रस ने कहा, परंतु ये वो बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी। तब उसने इस भविष्यवाणी को दोहराया। अब चूंकि पत्रस ने इसे दोहराया था और बताया था कि वे जो देख रहे हैं ये वो है जिसके बारे में योएल ने कहा था, लोगों ने ये मान लिया कि ये योएल की भविष्यवाणी का पूरा होना है। सच तो ये है कि पत्रस ने कहीं नहीं कहा कि ये भविष्यवाणी का पूरा होना है, वो केवल परमेश्वर की आत्मा के उंडेले जाने की शुरुआत थी, लेकिन योएल की भविष्यवाणी असल में अंतिम दिनों के संबंध में थी। ये इसराइल राष्ट्र के संबंध में है जब परमेश्वर इसराइल को उसकी आशीषों और अद्भुत कृपा का स्थान लौटाएगा और इसराइल एक बार फिर परमेश्वर की रोशनी को संसार में लाने का माध्यम होगा और ये कुछ समय बाद होगा। इसराइल के बचाए जाने के बाद कोई शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे धर्म वृद्ध स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में आत्मा उंडेलूंगा और मैं चमत्कार दिखाऊंगा। और जरूर बाइबल इन चमत्कारों के बारे में बताती है कि अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। ये यीशु के द्वारा बड़े दुख के समय के रूप में बताया गया है। ये सब बातें परमेश्वर के महान और प्रभावकारी आगमन से पहले होगी। यही मसीह का सामर्थ और महिमा में गौरवपूर्ण वापसी का दिन होगा। योएल अध्याय 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, बड़े संकट के समय वो छुटकारा पाएगा या बचाया जाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं प्रभु यहोवा के वफादार शेष जनों को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। इसलिए उसको अभी पूरा होना है। ये एक भविष्यवाणी है और इसका पूरा होना अभी शेष है।